हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮನಿ ಗೌರಾತ್ವೇಷೇ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸ್ ಆದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮಂದಿರ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಾಸಿಕ್ ಪ್ರಾತಃ ಭಾಗವತ್ ಸತ್ಸಂಗ್ ಮೇ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೈ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕೆ ಚೌಥೆ ಸ್ಕಂದ ಕಿ ಆಠವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ 23ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಆಜ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾ ವಿಷಯ ಹೈ. ಚೌಥೆ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ನೇ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ದಿಯಾ ಹೈ? ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಥ್ ಆರ್ಡರ್, ಚತುರ್ಥ ಸ್ತರ ಕೀ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೋ ಪಹಲಾ ಸ್ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೌನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ? ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಉಸ್ಕೋ ಸ್ವರ್ಗ ಬೋಲ್ತೆ. ದೂಸರೆ ಸ್ತರ ಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕರ್ತೆ, ಉಸ್ಕೋ ವಿಸರ್ಗ ಬೋಲ್ತೆ. ಫಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನೇ ಕಿಯಾ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಔರ್ ಶತ್ರುಪೋ ಕೋ, ಯೇ ಹುಯಿ ತೀಸರಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಔರ್ ಫಿರ್ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಔರ್ ಶತ್ರುಪ ಕೆ ದೋ ಬೇಟೆ, ಉಸ್ಮೇ ಸೇ ಪಹಲೇ ಬೇಟೆ ಕಾ ಸಾರಾ ವರ್ಣನ್ ಹೈ ಇಸ್ ಚೌಥೆ ಸ್ಕಂದ ಮೇ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಕಾ ವಂಶ. ಸೋ ಯೇ ಚೌಥೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹುಯಿ ಕೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಕೆ ವಂಶ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಹೈ. ವೈಸೆ ಚೌಥೆ ಸ್ಕಂದ ಕೋ ವಿಸರ್ಗ ಕಹತೆ ಹೈ, ವಿಶೇಷ ಸರ್ಗ, ಜಿಮೇ ಆಕೃತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಲಗ ಅಲಗ ಹೋತಿ ಹೈ, ಅಲಗ ಅಲಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೋ ಚೌಥೆ ಸ್ಕಂದ ಕಾ 31 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇ ಚಾರ್ ವಿಭಾಗ ಹೈ, ಫೋರ್ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಹೈ. ಪಹಲೇ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಯಜ್ಞ ಹೈ ಮುಖ್ಯ, ಧರ್ಮ ಕಾ ಅಂಗ ಯಜ್ಞ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಕಲಿಯುಗ ಕಾ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಸೋ ಯಜ್ಞ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಹೋತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಯಜ್ಞ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಹೋತಾ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ. ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಅಗರ್ ವೈಷ್ಣವ ಕಾ ಅಪರಾಧ ಹೋ ತೋ ಯಜ್ಞ ಪೂರಾ ನಹೀ ಹೋತಾ. ತೋ ಪಹಲೇ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಯಜ್ಞ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಕೆ ಅಪರಾಧ ಸೇ ಯಜ್ಞ ವಿಧ್ವಂಸ ಹೋ ಗ್ಯಾ, ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಪ್ರಕಟ್ಯ ಸೇ ಕ್ಷಮಾ ಯಾಚನಾ ಸೇ ಯಜ್ಞ ಸಂಪನ್ನ ಹುವಾ. ತೋ ಯೇ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಹೈ. ಅಬ್ ಜೋ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಬ್ ಶುರು ಹೋ ರಹೇ, 8 ಸೇ ಲೇಕೆ 9 10 11 12 13 ಜೋ ಭಿ, ಯೇ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಭಕ್ತ ಕಾ ಹೈ, ಜೋ ಅರ್ಥ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪನೆ ಪಿತಾ ಸೇ ಬಡೆ ರಾಜ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಭಕ್ತ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಕಾ, ಔರ್ ಕಹಾಂ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ? ಚಾಹಿಯೇ ಅರ್ಥ ಲೇಕಿನ್ ಜಾ ಕಹಾ ರಹಾ ಹೈ? ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪಾಸ್, ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಪಾಸ್. ತೋ ಯೇ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಥ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಹೈ. ಫಿರ್ 11 ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಹೈ, ಜೋ ಸಬ್ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಸಾರೆ ಪ್ರಜಾ ಔರ್ಸೆ ಅಪನೆ ಇಚ್ಛಾಓ ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಔರ್ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಅಂಶ ಅವತಾರ ಔರ್ ಅಯೋನಿಜ ಹೈ, ಯೋನಿ ಸೇ ನಹೀ ಪ್ರಕಟ ಹುಯೆ ಹೈ, ವೋ ತೋ ಶರೀರ ಕೆ ಮಂಥನ್ ಸೇ ಹುಯೆ ಹೈ. ತೋ ವೋ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಥ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ದ್ವಾರ, ದಿವ್ಯ ಕಾಮ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ, ಸಬ್ಕಿ ಇಚ್ಛಾಓ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೇ ಹೋತಿ ಹೈ, ಸಬ್ ಜೀವೋ ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಹುವಾ. ಔರ್ ಫಿರ್ 8 ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಪ್ರಚೇತಾ ಔರ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಹಿತ ಇನ್ ದೋನೋ ಕಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಾರದ ಜಿ ಕಾ ಪ್ರವಚನ ಹೈ. कि अंत में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए भी भक्त के सहायता की जरूरत है। तो ऐसे चार विभाग पूरे चौथे स्कंद के हैं, 7, 5, 11 और 8 अध्याय। तो इसके अंदर दिव्य दिव्य धर्म की प्राप्ति भगवान की यज्ञ के द्वारा, जैसे अब कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, चाहिए अर्थार्थी भक्त भी हो तो भगवान विष्णु के पास जाए तका तो मन में कामना भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी और भक्ति उसकी पक्की हो जाएगी। और भगवान इस वंश में आगे पृथु महाराज का चरित्र सबकी इच्छा पूर्ति का है, अपने प्रजा की सारी इच्छा पूर्ति की है। प्राचीन बरहित की तो तत्काल राज त्याग प्रचार ऐसा होना चाहिए, नारद की तरह के तत्काल राज को त्याग कर दे, पुत्रों का प्रतीक्षा भी नहीं करे। और प्रचेताओं को तो भगवान शंकर की रुद्र संप्रदाय में दीक्षा मिली, वैष्णव रुद्र संप्रदाय के वो अनुयायी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु की प्राप्ति का साधन बताया, भगवान विष्णु का दर्शन भी हुआ। और उसमें बड़ा प्रसंग अद्भुत है कि भगवान विष्णु ने उनके विवाह की व्यवस्था भी की। तब हम सोच रहे हैं विवाह अगर भगवान किसी का कराए तो करे, अपने आप नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्मचारी सारे बच जाएंगे। भगवान ने वहां विवाह की व्यवस्था भी की और कहा कि विवाह के बाद भी बंधन में नहीं पड़ोगे, उसका भी साधन बताया, बहुत बड़े अद्भुत 2-3 श्लोक है। और प्रचेताओं के पास फिर वापस नारद जी आके वो जो विशेष श्लोक प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं तरोर मूलम वाला, वो आके प्रचार किया उनको कि भगवान की भक्ति करो, अब बहुत राजपाट हो गया चलो, तो वो भी मान गए। तो ये चौथे स्कंद का पूरा विश्लेषण विभाग है। अब जो आज हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ये एक माता का कर्तव्य कैसा होना चाहिए पुत्र की प्रति, ये माताओं के लिए शिक्षा है। ये सुनीति माता जो द्रु की माता है, वैसे उत्तानपाद अब कथा चल रही है, पहले 5 श्लोक तो ऐसे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की उत्पत्ति कैसे होती है ब्रह्मा जी के द्वारा, ये सब भी उसी ने की है। पर पाप कहाँ होता है, पाप किसने पैदा किया, कहाँ से निकलेगा पाप भाई, जो कुछ आना है भगवान से ही है और कहीं से नहीं आएगा, कोई चीज भगवान के बगैर तो आती नहीं, तो कहाँ होता है पाप भगवान में, बैक में पीछे, जो भगवान के पीछे चला जाता है उसको पाप पकड़ लेता है, माया पकड़ लेती है, वो भगवान के पीछे होती है, इसलिए भगवान के सन्मुख होना चाहिए। भगवान के पीछे अर्जुन भी बैठा था रथ के तो उसको भी माया ने पकड़ लिया, फिर उसको सीधा मुंह करके आगे पाना पड़ा। ये हमारा अनुभव है, वो पीछे बैठा भगवान की पीठ में बैठ गया ना थोड़ी देर के लिए, तो उसको भी माया पकड़ ली, तो आगे आके उपस्थ आगे आके सन्मुख हो गया तो समस्या का समाधान हो गया। तो भगवान के पीछे ये सब कुछ होता है जो पकड़ने वाला है, इसलिए भगवान के हमेशा सामने रहना चाहिए, उनके सामने माया नहीं आ सकती है, पाप नहीं आ सकता है। तो माता के कर्तव्य का ये वो तो ये काम क्रोध लोभ मोह इसकी उत्पत्ति का वर्णन है जो सबको बंधन में डालते हैं। और फिर तत्काल कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, भी अयोनिज है स्वयंभू मनु, पहला अयोनिज है, ये संकल्प की सृष्टि है, संकल्प से सृष्टि होती है, आपकी भी सृष्टि संकल्प से, रोज रात को स्वप्न में कितनी सृष्टि करते हैं, हमारा ये घर बन जाएगा, ये हमारा मकान दुकान, ये सृष्टि आप भी करते हैं लेकिन होती नहीं है। ये संकल्प की सृष्टि तो पूरी दुनिया करती है लेकिन हो नहीं रही है, उनके संकल्प में इतना प्रबल था कि हो जाती थी, करते तो हम भी सब है लेकिन होती नहीं है, तो संकल्प की सृष्टि है। और उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, ये पहला पृथ्वी के ऊपर स्टैटिक है कि लड़के 2 ही हुए और लड़कियां 3 हुई, इसका मतलब लड़कियों को ज्यादा होना चाहिए, हाँ। और फिर एक लड़की की 9 कन्याएं और 1 लड़का है, ये दूसरा, देवहूति की 9 पुत्रियां और 1 पुत्र है। तो ये जो आजकल लड़कियां नहीं चाहते हैं ये भागवत के विरुद्ध जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि भगवान ने व्यवस्था जो की है उसका उल्टा काम कर रहे हैं। सो उत्तानपाद की दो पत्नियों का वर्णन है, सब जानते हैं, एक सुरुचि जो अपने मनमानी करे, जैसे अच्छा लगे वैसे करे, और सुनीति मतलब जो नीति से चले, गलत नहीं करे सही करे। तो सुनीति को बेटा होता है ध्रुव, जो अटल होता है, सदा रहता है, और सुरुचि को जो बच्चा होता है वो तत्काल होता है उत्तम, उसका तत्काल में टिकट होता है, वैसे मिलता ही नहीं है उसको, वो उत्तम है। उत्तम को मैं थोड़ी देर के लिए रहता है, तम से ऊपर है लेकिन थोड़ा नीचे आएगा तो तम में आ जाएगा, तो उसका तत्काल उसका रहता है वैभव, फिर समाप्त हो जाता है। अब ये कथा तो सबने सुनी है, लेकिन चेतना महाप्रभु 100 बार ध्रुव कथा सुनी तोटा गोपीनाथ में बैठकर, और गदाधर पंडित से 100 बार ध्रुव कथा सुनी। तो आप तो दूसरी तीसरी बार सुनते हैं, इसलिए परेशान नहीं होने का। और चेतना महाप्रभु ने कहा कि ध्रुव महाराज, जितना अगर हमारा दृढ़ संकल्प हो जाए उसका 1% भी हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति का संकल्प दृढ़ हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इसलिए सीखना चाहिए ध्रुव महाराज की दृढ़ संकल्प को, तो विशेष हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प भक्ति के प्रति आए, इसलिए ध्रुव चरित्र का, तो उसमें क्या सहयोगी है ये हमको देखना है। सो कथा तो सबने सुनी हुई है, उसमें विशेष चीज जो है वो ईर्ष्या है, और ये सब में होती है लेकिन माताओं में जरा मात्रा ज्यादा होती है। ईर्ष्या की मात्रा, जब ब्रह्मा जी बांट रहे थे तो पुरुषों को कम मिली और माताओं को ज्यादा मिली। ईर्ष्या का मतलब दूसरे की साड़ी भी क्यों अच्छी है, अंगूठी भी क्यों अच्छी है, ये सब उनमें, ये तो गंधारी और जैसी सती उसका नाम है, उसको भी क्रोध आ गया कि पहले कुंती ने क्यों बेटे को जन्म दिया। तो यहां सुरुचि राजा के पास बैठी है, उसका बेटा गोद में बैठा है उत्तानपाद के, उत्तम, तो छोटा ध्रुव का मन किया कि मैं भी पिता की गोद में बैठता हूं, इसमें क्या, मेरा ही पिता है। वो ऊपर चढ़ना था अपने आप, होना तो पिता को उठाना चाहिए, पिता ने तो उठाया नहीं, वो अपने आप चढ़ने का प्रयास किया तो सुनीति ने उसको नीचे खींच लिया, रुको ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, इसका मतलब तू राज के अधिकारी नहीं हो, इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकते, और सिंहासन के बैठा है उसके उसके गोद में भी नहीं बैठ सकते हो। हाँ तुम्हें बैठना है तो विष्णु की प्रार्थना करो। ये बहुत अच्छी बात कही, ये सुरुचि की अच्छा बात, जाओ जाओ विष्णु की प्रार्थना कर लो, उसको प्रसन्न करना ये भी ठीक है। फिर अपराध कर दिया कि उसके प्रसन्नता के बाद भी मेरे उधर में तुम आके और मेरे पेट से जन्म लोगे तब ये प्राप्त होगा। अब ये अपराध क्या है सुरुचि का, कि भगवान की भक्ति करके प्रसन्न करने के बाद भी कोई गर्भ में जाना पड़ेगा, ये तो भगवान की भक्ति का अपराध हो गया ना, ये सुरुचि का अपराध है। भगवान की भक्ति के शक्ति के ऊपर उसको विश्वास नहीं है और फिर भी सुरुचि के गर्भ में आए, ये अपराध हो गया। और बच्चे को तो छोटा बच्चा ही है, उसको पिता की गोद, और पिता चुप करके बैठ गया, ये मौन सुकृति लक्षणम, उसने कुछ बोला नहीं, ये उत्तानपाद का जो है दोष है। अब ध्रुव को क्रोध आया और सीधा अपनी मां के पास आया, और मां को तो दूसरे जो खड़े थे उन्होंने सब समाचार दिया, बेटा तो रो ही रहा था और मां भी दुखी हो गई, लेकिन दुखी होने के बाद भी मां ने जो 2-3 बातें कही हैं वो माताओं के लिए बहुत अच्छी है। पहला तो कहा कि बेटा तुम्हारी जो मासी है उसने ठीक कहा है कि उसकी गोद में वो तो भगवान की प्रार्थना ही करनी चाहिए, वो अच्छा कहा है उसने कि भगवान से तुम्हारे को वो प्राप्ति होगी जिसकी तुम्हारी इच्छा है। और फिर कहा कि उनकी प्रति दोष दृष्टि मत रखना, ये सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जिन्होंने आपको ऐसा मानो दुख दिया है उसकी प्रति दोष दृष्टि मत रखना, इसका इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है। जिसके दोष को देखोगे उसका दोष आप में आ जाएगा। ये दोष जिसके दोष के ऊपर दृष्टि डालेंगे वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। अगर ध्रुव बैठ के सुरुचि का ही ध्यान करे, इसने मुझे ये कहा, इसको नहीं, तो सुरुचि उसके दिमाग में बसी रहेगी ना। अगर वो भगवान के पास उसकी माँ भेज रहे तो भगवान बसा रहेगा ना। तो जिसके ऊपर आपको क्रोध है, जिससे आप द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, उसको देखना नहीं चाहते हो आंखों से, लेकिन उसको दिल में क्यों बिठा के बैठते हो, सारा दिन उसको उठा के क्यों घूमते हो बाहर। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि उसको निकाल के फेंक दो। और बेटा भगवान ही, ये तो भगवान से मांगना चाहिए, और कोई नहीं दे सकता, और देवता भी नहीं दे सकता है। जो आपको चाहिए वो अच्छी बात कही है सुरुचि ने। सुरुचि की बात बहुत सही है, भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास जाना चाहिए। तो आज के श्लोक में सुनीति बहुत बड़े विचार के बाद ध्रुव को उनका मार्गदर्शन कर रही है, पथ प्रदिष्ठित गुरु की जगह पे बैठ के। माता वैसे भी गुरु होती है, लेकिन आज वो सही गुरु का कर्तव्य निभा रही है। तो आज सुनीति का ये श्लोक पद प्रतिष्ठित गुरु और माता के गुरु का कर्तव्य निभाने का श्लोक है। तो 23वें श्लोक को हम पढ़ते हैं, तो आप इसकी आवृत्ति कीजिए। तो अब आप देखिए, माता सुनीति के सामने ध्रुव बेचारा हताश खड़ा है कि क्या करना चाहिए, और माता बहुत विचार के बाद दुख पी रही है, और उसके बाद कह क्या रही है आज, ये उसका मेरे ख्याल में, इसके बाद फिर मैत्रेय जी बोलेंगे। तो ये माता सुनीति की शिक्षा, पथ प्रदर्शित गुरु की शिक्षा, माता के कर्तव्य का पालन है। तो सुनिए, नान्यं ततः पदं प्लासलोचना दुःखः चिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रीयैतयेर अंग विमर्ज्यामाणया। नान्यं तत पद्म प्लासलोचनात् दुःख छिद्दं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रीयैतैर अंग विमर्ज्या मन्या। नान्यं तत पद्म प्लासलोचना दुःखचिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रीयैतैर अंग विमर्ज्यमाणया।
नान्यदततः पदं प्लासलोचनात् दुःखः चिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तग्रहीतपद्मय श्रेयः इत हीर अङ्गविवर्यमाय नान्यत्र पदं पलासलोचनम् दुःखचिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रेय इतर्थसङ्गवीर्यमाय माताजि नान्यमतः पदं पाशलोचन दुःखचिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रेयः अतैरङ्गविमर्ग्यमानय नान्यं ततः पद्मप्लासलोचनात् दुःखः चिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृगयते हस्तगृहीतपद्मय श्रेय इतयोरङ्गविमर्ग्यमानय
सो इस श्लोक के शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको भाषा में कितने शब्द इसमें दिख रहे हैं, आपकी भाषा में शब्द है इसमें, उनका अर्थ आ रहा है आपको कुछ? 80% शब्दों का अर्थ आपको आता है। महाप्रभु ने कहा है पांच भक्ति के अंगों में भागवत के शब्दों के अर्थ का रस आस्वादन करना, भागवत शब्द अर्थ रस आस्वादन। और फिर महाप्रभु ने कहा है भारत भूमि ते हैला मनुष्य, क्यों लिखा है? क्योंकि भारतवासियों की भाषा में ये शब्द हैं और किसी की भाषा में शब्द नहीं है, इसलिए आपको इसमें देखिए पहला शब्द न अन्यम तो आता है ना, न अन्यम और कोई नहीं, न अन्यम सबको आता है कि नहीं आता, और कोई नहीं, न अन्यम। और न अन्य का दूसरा अर्थ सीधा है, अगर भक्ति का सूचक है अनन्य, न अन्य और कोई नहीं तो कौन, तो उस कौन का नाम है और कोई नहीं तो कौन, तत्ता कौन। तब उसके लिए तीन शब्द पढ़े देखो, पद्म पलास लोचनाद। अब इनका आपको तीनों का, एक का नहीं आए, दो का तो आता है कि नहीं आता है? पद्म का आता है ना कमल, पलास का आता है पत्ते, पलास पत्ते को कहते हैं, और लोचन का तो आता है ना आंख। तो पद्म पलास लोचन का मतलब जिसकी आंखें कमल के पत्ते जैसी हैं, उसके अलावा जिसकी आंखें पद्म पत्र जैसी है उसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है? तो भगवान की आंखों को पद्म से ही क्यों तुलना देते हैं, और कुछ नहीं नजर आ उससे अच्छा, कुछ और कोई फूल नहीं है क्या? हाँ, फिर पद्म हाथ में, फिर पद्म चरण, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कलम, ये सब कमल ही कमल क्यों, और कोई फूल अच्छा नहीं है? सुगंध भी कमल में तो नहीं होती है इतनी ज्यादा, तो कोई कारण होगा ना, क्या कारण है? मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूं, कमल ब्रह्मा की क्रिएशन है या उससे पहले है? ब्रह्मा कमल के ओर, कमल ब्रह्मा से पहले पैदा हुआ ना, तो ब्रह्मा से क्रिएशन से भगवान की तुलना कैसे देंगे? जो चीज ब्रह्मा से पहले है उससे देनी चाहिए ना, नहीं तो कमल पहले था फिर ब्रह्मा पैदा हुआ ना, तो भगवान ब्रह्मा की क्रिएशन से कुछ भी नहीं है, उनका मिलाया जाता है, तो ये बहुत विशेष शब्द है, इससे का अर्थ है कि भगवान ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है, उससे परे है। पद्म प्लस लोचना का अर्थ आ गया, पहली लाइन का आप तो अर्थ आ गया, और किसी के पास नहीं जाओ, वो पद्म नयन के पास चले जाओ, ठीक है। अब दूसरी लाइन में देखा, अरे भाई क्यों जाएं, उधर मिलेगा क्या भाई, किसी के पास जाएंगे तो कुछ मिलेगा तब जाएंगे ना, ऐसे क्यों जाएं। तब कहते दुख छिद्दम, आपके दुख का वही निवारण होगा, और कोई जगह नहीं है। आपको दुख हो गया बेटा, आपकी सोत माँ ने आपको जो कठोर वाणी कही है उससे आपको दुख हुआ है। यहां दो शब्द और भी सुन लीजिए, बाण का दर्द इतना नहीं होता है जितना वाणी का होता है। बाण से वाणी ज्यादा घायल करती है, बाण से तो थोड़ा खून निकलगा भर जाएगा, लेकिन जवान से जो वाणी से निकला हुआ घाव है कभी नहीं भरता। सर्प से सर्पणी ज्यादा विषीली होती है और बाण से वाणी ज्यादा घायल करती। हाँ, तो आपकी सोतेली मां की वाणी से जो आप घायल हुए हो, इस दुख का छिद्दन, छिद्दन का मतलब निवारण, केवल पद्म लोचन के सामने जाने से होगा, और कोई जगह नहीं है। भाई क्यों जाएं भगवान के पास, बोला अगर आपको दुख है तो जाओ। अब आप अपने आप से पूछो, आपको दुख है क्या दुनिया में? हाँ है दुख, आपको संसार में परेशानी है, दुख है कि नहीं है, तो जाना चाहिए ना। तो द्रु की कथा को सुनते हुए अपने आप पे अप्लाई करें, तब भागवत प्रैक्टिकल होगी, नहीं तो द्रु महाराज बहुत अच्छे, आप क्या करोगे बोलो, ऑफिस का प्रसाद खाएंगे बस। क्या दुनिया में हमको दुख है कि नहीं है? है ना, तो फिर भगवान के सामने जाना चाहिए। अब माता जी एक शब्द कह रही है, इसका अर्थ आपको दूसरा आता है, क्या कहती है? मृगयामी। मृगयामी को किसको कहते हैं? मृगया करना किसको कहते हैं वैसे? शिकार करना मृगया, हाँ? और कंचन का क्या अर्थ है वैसे? एक अर्थ कंचन का सोना है, यहां ठीक है, संस्कृत के एक शब्द के 12-12, 14-14 अर्थ होते हैं, तो कौन सा अर्थ यहां लगता है वो मिलता जुलता होना चाहिए। भला आपको सोने का शिकार करना हो तो कितना आसान है क्या? नहीं है ना। एक शिकार का दूसरा अर्थ है कि ढूंढने से, शिकार करने के लिए ढूंढना पड़ता है ना, तो मृग्यामी का अर्थ है मेरे द्वारा खोज करने से। खोज करनी पड़ेगी ना शिकार को, ऐसे आपके सामने तो नहीं आएगा, खड़ा होगा। तो माता जी कहती है मेरी खोज है, जो मैंने सब जगह ढूंढा है, उसमें से जैसे सोना बहुत मुश्किल होता है कंचन का, वर्ड टू वर्ड में प्रभुपाद जी ने कंचन के लिए क्या लिखा है? एनी वन एल्स, कि सोने के समान और कुछ नहीं होता है। तो ये भगवान जो है इसके अलावा इसका दूसरा अर्थ निकालेंगे तो तब तक कंचन गौरंगी के जो पास में खड़ा होता है उसके अलावा और किसी से काम नहीं बनेगा। वो कंचन का मतलब और कोई नहीं, कंचन दूसरा अर्थ निकालें तो ये होगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसका जो अर्थ लिखा है वो ऐसे पहले लिखा है, मृगयानी का मतलब मेरे ढूंढने से, आई एम सर्चिंग आफ्टर, मैं जो जितना जितना मैंने खोज किया है उसमें से इसके अलावा, कंचन का मतलब इसके अलावा, क्यों सोना एक्सक्लूसिव है, सोने के कोई तुल नहीं होता है, तो अतुल्य है, तो ये शब्द का यहां अर्थ है उसके अतिरिक्त, भगवान विष्णु के अतिरिक्त, नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो आपके दुख का निवारण कर सके, ठीक है। दो लाइन तो समझ अर्थ में समझ में आ रहा है, अब तीसरी लाइन में आ जाए, यो मृग्यते हस्तग्रहीत पद्मया। अब इस श्लोक में कितने शब्दों का अर्थ है? हस्त का अर्थ तो आता है ना, ये माता जी आपको तो आना चाहिए हस्त, हाथ, हाँ नहीं, हस्त का तो आता है ना, ये माता जी को केवल विवाह में कुछ नहीं करते हैं, पानी ग्रहण कहते हैं, हाथ दूसरे पति के हाथ में देती हैं, वो समझती हैं अभी इसका घर भी मेरा, दुकान भी मेरा, मकान भी मेरा, सब कुछ मेरा,
तो
हाथ का तो सिर्फ हाथ पकड़ने से वो सब अंदर में कैलकुलेशन लगाते हैं, सबकी मालिक मैं हूं अभी। तो यह तो हस्त ग्रहण पाणी ग्रहण ही कहते हैं इसको ना। सो हस्त ग्रहित पद्म, या जिसके हाथ में पद्म है, तो दो के हाथ में पद्म होता है, एक तो भगवान विष्णु के हाथ में तो है ही है कमल, चार आयुध में एक कमल है, और दूसरा कमल किसके हाथ में होता है, लक्ष्मी के। हाँ, तो अब मृग यो मृग्यते हस्त ग्रहित पद्मया, अब इसका अर्थ ऐसे भी हो सकता है कि जिसके हाथ में कमल होता है लक्ष्मी, वो जिसको ढूंढती रहती है अथवा जिसके पास सदा रहती है, तो इसका अर्थ ऐसे होगा ना, जो 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 जिसके हाथ में कमल है वो जिसको ढूंढती है, तो लक्ष्मी जिसको ढूंढती है, बोले लक्ष्मी उसको ढूंढती है, लक्ष्मी को कौन ढूंढते हैं, ये प्रश्न होगा ना। तो श्री इतर दूसरे तो लक्ष्मी के पीछे हैं, लेकिन लक्ष्मी विष्णु के पीछे है। इसके कहने का तात्पर्य यह है, जो लक्ष्मी को तो देवता भी जाके प्रणाम करते हैं, क्योंकि विष्णु के घर में जाने से पत्नी से आज्ञा लेनी पड़ती है, तो देवता भी जिसके संसार तो लक्ष्मी के पीछे है ही। अब यहां एक बात आपको सीधी बताता हूं, लक्ष्मी विष्णु के क्या लगती है, हा? पत्नी है ना। अब सारे मंदिर में आके क्या मांगते हैं विष्णु से, हा? अब क्या विष्णु क्या सोचे, आप बोलो क्या सोचना चाहिए विष्णु को, हा? अरे भाई विष्णु पत्नी है, आप उसको बोलते हैं कि पत्नी दे तो डंडा मारेगा ना। तो मूर्खता है कि नहीं है पूरी दुनिया की, हा? अब भगवान के पास जाके उसको कहो कि हमें लक्ष्मी दे दो, ये कोई अच्छी बात है, ये बुद्धिमानी है क्या, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, कोई सामान्य बात नहीं है। वो लक्ष्मी जिस हाथ में कमल लेके भगवान को ढूंढ रही है और हम सब लक्ष्मी को पकड़ने चाहे, तो भगवान कोई आशीर्वाद देगा क्या? बहुत गंभीर विषय है असल में, इसलिए दोनों को कहना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में वेद की ये प्रार्थना सिखाते थे मंदिर में जाके, तुम्हें वो माता चाहे पिता ऐसे बोलते थे, हे मेरी माँ हे मेरे पिता मैं तेरा बालक हूँ, तो चलो गोद में बिठा के दूध पिला लेगी, बाकी नारायण से लक्ष्मी मांगोगे तो रावण की तरह डंडे पड़ेंगे। तो ये बहुत ये तो लिख के रखना चाहिए कि मत मांगना डंडे पड़ेंगे। तो अब यो 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 मृग्यते हस्त ग्रहित पद्म, या इसका अर्थ समझ में आ गया, जो हाथ में पद्म लेके भगवान के पास, जो भगवान को ढूंढती रहती है तो भगवान के चरणों में बैठती रहती है। श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री तो लक्ष्मी है ना, श्री देवी, भगवान की दो पत्नियां हैं भूदेवी और श्री देवी, श्री देवी चल है और भूदेवी अचल है, और दोनों विष्णु पत्नी है, और दुनिया सारी एक तो धरती को खरीदते हैं और एक पैसे को ला, दोनों बदमाशों की लिस्ट में आते हैं। नहीं है ना, ये भू माफिया है और दूसरा क्या कहते हैं उसको, धन वाली माफिया को क्या बोलते हैं, पूंजीवादी, भूमि है भू माफिया और पूंजीवादी, ये दोनों का इसका हाल है। इतरतस का मतलब उनके अलावा, उनके अलावा मतलब देवता आदि के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लक्ष्मी के पास जाते हैं, और लक्ष्मी जिसके पास है उसी के पास चले जाओ ना। और फिर है अंग, अपने बेटे को कहती है, तुम तो मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो ना, बेटे को अंग कहते हैं, मेरा अंग है, अंग अंश, तो ये अपने बेटे को संबोधन कर रही है। और विमर वे वी मतलब विशेष स्पेशली मृग्य माणाया मतलब जिसकी पूजा की जाए, जिसको अपने आप को अर्पण किया जाए, जो जो पूजा के उसके अलावा और कोई पूजा के योग्य नहीं है। वन हु इज वर्शिप्ड, प्रभुपद ने कहा जिसकी पूजा की जाए। अब इस श्लोक का अर्थ कुछ समझ में आ रहा है? इतना टाइम इसके ऊपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब ये आपको श्लोक के शब्द जो है वो दिमाग में अटकेंगे अगर मैं ऐसे पढ़ के जाऊं, न अन्यम नो अधर स्तः देयरफॉर, आपके दिमाग में अटकेंगे नहीं, ये तो ऊपर से चले जाएंगे। अब आपको इसमें थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, तब ये भागवत मंथन का विषय है। मंथन का मतलब थोड़ा दिमाग से उसको दिमाग में बिठाओ। अब आप में से 80% इसको समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माँ सूत्री सुनीति कहती है, बेटा दुरु, आपके दुख का निवारण केवल भगवान कमल नयन नारायण कर सकते हैं। ये देवता ब्रह्मा आदि भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनकी अपनी सफलता के लिए, और लक्ष्मी भगवान के चरणों को ही ढूंढती रहती है। तो फिर भगवान की ही जाके पूजा करो ना, और किसी करने की क्या जरूरत है? ये इसका सामान्य अर्थ है, ठीक है? अब इस हिंदी में से इसका अनुवाद पढ़ लो भैया। अंग, अंग का मतलब प्रिय ध्रुव, इसलिए कि मेरे अंग से उत्पन्न हो तो मुझे बहुत प्रिय हो, ठीक है?
कमल के तलों से जैसे जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके,
ठीक है?
ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है।
अब इसमें सिर्फ आप थोड़ा पूछें तो ये ब्रह्मा कहां से आए? जो अनुवाद में ब्रह्मा आया वो इतरतस से आए, अन्य, अन्य का मतलब देवता, ठीक है? अब अनुवाद समझ में आ गया, ठीक ठाक पक्का? इसके ऊपर आपका विश्वास है कि भगवान के अलावा और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए? ये दूसरा भाग भी इसका है कि हमको भी ऐसे समझना चाहिए कि लक्ष्मी के पीछे भी नहीं जाना चाहिए, जिसके पीछे लक्ष्मी जाती है उसके पीछे जाना चाहिए, ठीक है? अब पहला भाग प्रभुपाद जी के तात्पर्य का है देवता और भगवान के पूजा का अंतर, पहला सारा भाग उसके ऊपर है। तो आप पढ़िए जरा जोर से इसको। अच्छा जी, अब प्रभुपाद ने क्या लिख दिया सीधा कि सुनीति कहती है भगवान से मिलने वाले आशीर्वाद देवताओं से मिलने वाले आशीर्वादों के समान नहीं है। फिर कह दिया बहुत सारे देवताओं को मूर्ख समझते हैं कि एक जैसे हैं। तो ये मूर्ख शब्द प्रभुपाद ने कह दिया। लोग कहते हैं प्रभुपाद मूर्ख क्यों कह दिया, कहां से प्रभुपाद ने ये मूर्ख लिया? ये प्रभुपाद ने मूर्ख कहा है तो आपको कहीं से ढूंढ के इस मूर्ख को लाना पड़ेगा। कहाँ है भगवत गीता में? अबुद्ध, जिनको बुद्धि नहीं ना, अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते। तो प्रभुपद ने कहां से लिया है वो श्लोक आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे प्रभुपद देखो कितना कठोर शब्द लिखा है कि देवताओं की, देवता मूर्ख नहीं है। एक बड़ी गलती कच्चे भक्त करते हैं वो ये होती है, भाग गीता लिखती है कि देवताओं की पूजा करने वाले मूर्ख है, और कच्चे भगत समझ जाएंगे देवता मूर्ख है। ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है। देवता की पूजा करने वाले मूर्ख है, देवता मूर्ख नहीं है। देवता वैष्णव है क्योंकि विष्णु की गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो, विष्णु के भगवदगीता में प्रभुपद ने कहा डेमीगॉड्स आर वैष्णवास because they are serving under the direction of Vishnu. इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, तो वो तो वैष्णव है तो वो मूर्ख नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, कहना चाहिए पूजा वाले को मूर्ख, हमारे दिमाग में देवता पहले खड़ा होता है और हम उसका अपराध कर देते हैं। इसमें हमारी बहुत सी नेगेटिव मार्किंग होती रहती, ये बहुत सावधानी का विषय है। पूजा करने वाले मूर्ख है, देवता नहीं। इसलिए पूजा करने वाले की निंदा करना तो ठीक है, लेकिन देवता की निंदा उसके साथ हो जाए तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। और ये जाने अनजाने में नए भक्तों से होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में मैच्योर ब्राह्मण जो होते हैं लिखा है, वो कभी किसी देवता का निरादर नहीं करते, चाहे वो कितना भी भयानक काली या भैरव जैसा हो। ये एक प्रभुपाद का तात्पर्य, बहुत सीरियस तात्पर्य है कि देवता का अपमान नहीं करना है, देवता की पूजा करने वाले का करना। हम तो देवता को ही उठा के बाहर फेंक के आते हैं जी। ये सावधानी का विषय है, ये एक कारण है जिसके कारण प्रगति में गति नहीं हो रही है। तो बहुत सावधानी से इस प्रचार को करना चाहिए। पूजा करने वाले मूर्ख हैं और दोनों का फल एक जैसा नहीं है भाई। देवता स्वयं भी सदा के लिए नहीं है तो उनका फल तो सदा के लिए नहीं हो सकता है ना। भगवान तो नित्य है तो उसका फल नित्य होगा ना। तो आपको कौन सा फल चाहिए, जो सदा रहे वो चाहिए या थोड़े दिन रहे वो चाहिए? नहीं, यहां बात है सुख की भाई। दुख जाएगा तो सुख आएगा ना, तो सुख आपको कब चाहिए, सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? हाँ, घर में चाहिए कि बाहर दुकान में चाहिए भाई? कहाँ चाहिए, एक दो आदमी से चाहिए कि सबसे चाहिए? हाँ, कहाँ चाहिए सुख, कब चाहिए, किससे चाहिए? तो उत्तर क्या है? सदा चाहिए, सब जगह चाहिए और सबसे चाहिए। अब कौन है जो सब जगह है, सब 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 समय है और सब में, वो कौन है? और कोई है क्या? और कोई नहीं है तो फिर और कहीं से मिलेगा कैसे? बहुत सीधी सी बात है ना, और कोई सब जगह तो नहीं है। तो जो सब जगह है, सब समय है, सब में है, वही दे सकता है, सब नहीं दे सकते। या तो आपको चाहिए घर वाला सुख केवल, तो घर वाला दे सकता है भाई जो सुख बाहर वाला है तो बाहर वाला दे सकता है बाहर, लेकिन दोनों जगह वो नहीं कर सकता है। तो ये परिभाषा है, तो देवता नहीं दे सकते। अच्छा, क्यों नहीं दे? आप देवता की पूजा करने जाओ, देवता आपको क्यों नहीं दे सकता है? भगवत गीता में तो सीधा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप किसी देवता की श्रद्धा से पूजा करने जाओ तो वो श्रद्धा भी मैं देता हूं और देवता को अनुमति भी मैं देता हूं कि आपको वो वरदान दे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप देवता के सामने जाके प्रार्थना करते हो ना, उसको तो पता नहीं है कि उसकी आप प्रार्थना कर रहे हो, किसी और की कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में परमात्मा तो नहीं है वो देवता, वो तो सुनता परमात्मा है, आपके हृदय की बात को परमात्मा सुनता है। और देवता के हृदय में भी परमात्मा बैठा है, उसको कहता है कि ये तुम्हारी पूजा करता है तो ध्यान दो इसको, कहां तुम देख रहा है ये तो परमात्मा का काम है ना भाई, ये तुम्हारी पूजा कर रहा है, इसको दे दो, जो मांगता है वो दे दो। तो ये परमात्मा करता है ना, इसको कहते हैं परमात्मा, इस तरीके से काम ये देवताओं के माध्यम से करता है। और ऐसे ही प्रचार होता है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में उतरते ही क्या लिखा है, पहले मार्किनी भागवत धर्म में, क्यों लाए मुझे कृष्ण आप जानते हो, ये कैसे मेरी बात सुनेंगे ये भी आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं, आप इनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हो, अगर आप चाहोगे तो ये मेरी बात सुनेंगे। तो ये मैकेनिज्म है प्रचार का। और ये भागवत के दसम स्कंद के वेद की प्रार्थना का अंदर से प्रभुपाद ने लिया हुआ है कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय से, जैसे कमल से आप फूल गुलाब के पास जाएंगे हाथ लगाने के बगैर भी आपको सुगंध आएगी ना नाक में, ऐसे परमात्मा आपकी इच्छाओं को सूंघ लेते हैं आपको, और फिर परमात्मा तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं ना, तो जिसकी प्रति आपकी प्रार्थना है उसके हृदय में जाके भी काम करते और उसका मन बदल देते। तो देवता से मिलने वाला फल भगवान के मिलने वाले फल के बराबर है और सबसे एक जैसा है। ये मूर्खता, या सब भगवान है कि ये कहना मूर्खता है। प्रभुपाद ने एक जगह तो बहुत कटाक्ष से बोला है किसी स्त्री से कोई पूछे कि तुम्हारा पत्नी को पति कौन है, और वो कहे ये सारे ही है तो उसको बुद्धिमान माना जाएगा। प्रभुपाद ने एक जगह लिखा ऐसे कहा है कि ये बुद्धिमान ही है क्या, तो कोई भगवान कौन है, सभी ही, ये तो ऐसे ही हुआ कैसे कह सकते हैं सब भगवान है। कोई थोड़ी थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो भगवत गीता को उठा के पहले श्लोक में लिखा है धृतराष्ट्र वाचा, दूसरे में लिखा है संजय वाचा, फिर लिखा है अर्जुन वाचा, कृष्ण बोलते हैं तो भगवान वाचा लिखा है, तो इसका मतलब धृतराष्ट्र भगवान नहीं है, अर्जुन भगवान नहीं है, संजय भगवान नहीं है, कृष्ण ही केवल भगवान है। इतना सिंपल बात है फिर भी मूर्खों को समझ में नहीं आती, इतनी सिंपल है कि नहीं है। भागवत उठाओ, ब्रह्मा वाच, इंद्र वाच, रुद्र वाच, गंधर्व वाच है, और जहां भगवान बोलते हैं वहां विष्णु बोलते हैं वहां भगवान वाच लिखा है। तो सब भगवान होते सबके ऊपर भगवान क्यों लिखा है, कि व्यास देव को इतनी बुद्धि नहीं थी तुम्हारे को दे दी सारी कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी शास्त्र को उठाओ तो भगवान ने जहां बोला है वहां भगवान वाच लिखा है, और जहां किसी देवता ने बुलाया उसका नाम लिखा है, इंद्र वाच, चंद्र वाच, उनके नाम लिखे हैं। तुम सब एक जैसे होते तो एक में लिखने में कौन सी परेशानी थी। तो ये मूर्खता के प्रश्न है असल में, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो देवताओं का फल, देवता जो मांगोगे वो दे देगा, उसके फल से आपका लाभ होगा हानि होगा उससे देवता को कुछ लेना देना नहीं है। दोनों का अंतर इतना है सरलता से, आपका छोटा बच्चा है 5 साल का, जनवरी का महीना है, खांसी हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, आपकी जेब से 50 रुपया लेके और आइसक्रीम पार्लर के जाके और जब बोला आइसक्रीम दो, दुकानदार देगा कि नहीं देगा, दे देगा, और बच्चा खाएगा तो बच्चा को लाभ होगा नुकसान होगा, लेकिन दुकानदार कहेगा कि नहीं तुम्हारे को खांसी हो रही है बेटा मत खाओ, ऐसे कहेगा। अच्छा अपने बाप को वो बच्चा कहे कि मेरे को आइसक्रीम लेगा तो लेके देगा, कहेगा नहीं अभी तो कड़वी दवाई खाओ सुई लगेगी, नहीं देगा, नहीं देगा ना। लेकिन मई जून में जब अच्छा मौसम होगा तो पूरा फ्रिज भर के आइसक्रीम बच्चे को देगा, है ना। तो ये अंतर है देवता के आशीर्वाद में और भगवान के। देवता से जो मांगो वो देगा, भले आपको फिर टीबी हो कैंसर हो उससे देवता को कुछ नहीं देना है, आपने मांगा है आप पैसा दिया उतना दे देगा, लेकिन भगवान नहीं देगा। आपने मांगा आइसक्रीम और आपको देगा कड़ी दवाई, और जब बीमारी खत्म हो गई तब आपको वो दे देगा। तो भगवान भक्त की इच्छा को वरदान देने के प्रोसेस में प्यूरिफाई कर देता है, वरदान देने के समय के अंतर्गत उसकी इच्छा को ही शुद्ध कर देता है। ये ध्रुव के प्रसंग में हमको मिलेगा, ध्रुव ही कहेगा कि अब मैं मूर्ख टूटे हुए गिलास के टुकड़े मांग रहा था, मुझे हीरा मिल गया है तो अब मुझे टुकड़ों की जरूरत नहीं है। तो उसकी इच्छा पवित्र हो गई कि नहीं हुई प्रोसेस में, तो फिर उसको मिलेगा फिर भी भोग नहीं करेगा, सेवा में लगाएगा। ये दोनों में अंतर मिलेगा, ऐसा नहीं कि भगवान देते नहीं है, भगवान देते हैं लेकिन हृदय को इतना शुद्ध करके देते हैं कि जो वो देते हैं उसको हम फिर भगवान की सेवा में लगाते हैं, भोग नहीं करते। देवता देते हैं भोग में लगा देते, तो दोनों में अंतर है। तो ये पहला टुकड़ा है, आगे पढ़िए भैया। क्षणिक होते हैं, कौन सा श्लोक है जरा कोट करो, अंतवतम फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेदशाम देवान यजन्ति देवव्रता मद्यान्ति मामपि। ठीक है चलिए आगे। हाँ अल्पमेद सा, ओके
दूसरे शब्दों में चूंकि सारे ही देवता भौतिकता की दृष्टि से बद्ध जीव ही है,
सारे ही देवता भौतिकता की दृष्टि से बद्ध जीव है। अंग्रेजी में इसके लिए क्या लिखा है, ऑल डेमिगॉड्स आर ऑल मटेरियलिस्टिकली कंडीशन सोल्स, बद्ध जीव हैं। किस चीज में बधे हैं वो देवता? अच्छा, दो प्रकार के जीव हैं, एक को बोलते हैं जीव भूत, दूसरे को बोलते हैं ब्रह्म भूत। जो जीव भूत हैं वो बद्ध होते हैं और जो ब्रह्म भूत होते हैं वो मुक्त होते हैं। और ये ऐसे भागवत में लिखा है जीव भूत और ब्रह्म भूत, और भगवत गीता में लिखा है अक्षर चा अक्षर ए वचन। एक जीव क्षर है, एक अक्षर है। जो क्षर है वो बद्ध है, जो अक्षर है वो मुक्त है। तो देवता किससे बंधे हुए, किससे होते हैं? तीनों प्रकृति से, गुणों से बंधे हुए। देवता सतोगुण में होते हैं इसलिए बंधे हुए। देवता सतोगुण में होते हैं तो सतोगुण भी तो बंधन है। और देवता बंधे हुए हैं असल में, उनके मन में शासन करने की इच्छा होती है तो उसको भगवान शासन दे देते हैं। तो उनकी इच्छा है, इच्छाओं से मुक्त नहीं है, हैं भक्त लेकिन कामनाओं वाले भक्त हैं, निष्काम भक्त नहीं है, अकाम भक्त नहीं है। तो बंधे किससे हुए हैं? सत्वगुण से बंधे हुए। देवता सत्वगुण से बंधे होते हैं। रजोतमोगुण भले नहीं हो लेकिन सत्वगुण का प्रभाव होता है उनके ऊपर, इसलिए। और फिर वो मैनेज ही मटेरियल वर्ल्ड को करते हैं तो मटेरियल चीजें तो उसके दिमाग में रहती ही है ना, इसलिए देवता आपको देते ही दे ही मटेरियल देते हैं, क्योंकि उनके पास है ही भौतिक चीजें तो भौतिक ही देते, आध्यात्मिक नहीं दे सकते। और वो अंत नहीं, अनंत नहीं है, इसलिए अनंत नहीं दे सकते। एक जगह लिखा है भागवत में, भगवान से मांगने जाना चाहिए तो अनंत मांगना चाहिए, क्योंकि वो अनंत है, उससे थोड़ी चीज मांग के मूर्खता क्यों करते हो? तो अनंत तो भगवान ही है, उसी को मांग लेना चाहिए ना, अनंत से अनंत को ही मांग लेना चाहिए। ऐसे अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, ये बुद्धिमान है। और अनंत से सेना मांगना दुर्योधन जैसे है, और फिर कुछ भी नहीं बचेगा आखिर में। तो अनंत के पास मांगने जाना चाहिए तो अनंत मांगना चाहिए, थोड़ा नहीं मांगना चाहिए। आगे पढ़ लो भाई। ये माता ने गुरु का काम किया, अपने बेटे को भगवान के पास उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए भेजा। तो ये सब माताओं को सीखना चाहिए, चाहे बच्चों के कोई भी दुख हो भगवान के पास भेजना चाहिए, इधर उधर भटकने के लिए नहीं भेजना चाहिए, ये समझने की बात है। हाँ, तो श्री देवी भगवान की अपुलेंस जो भी भगवान के हैं वो लक्ष्मी के द्वारा, सबका पालन लक्ष्मी के द्वारा भगवान करते हैं, ठीक है।
अतः जो ऐश्वर्य की खोज में है वे संपत्ति की देवी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी संपत्ति की देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी महालक्ष्मी जी स्वयं भगवान की कृपा कांक्षी रहती है, अतः जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है की।
अच्छा भाई, अब दो बातें हो गई सीधी सी। सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, ठीक है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। क्या है? जब लक्ष्मी अकेली आती है तो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, चंचल लक्ष्मी है और जिसके पास आती है उसको उल्लू का पटा बनाती है, क्योंकि उल्लू के ऊपर आती है ना उसको अंधा कर देती है, वो धन के मद में इतना अंधा हो जाता है तो उल्लू जैसे ही होता है, उसको दिन रात लगती है, रात दिन लगता है, और रात को 12 बजे तक भागता रहता है, घूमता रहता है, और बाप माँ की किसी की धर्म की नेम की शास्त्र की कोई उसको परवाह नहीं है। ये लक्ष्मी उल्लू के ऊपर जो आती है, ये चंचल लक्ष्मी जो है ये, और दूसरी लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ के ऊपर आती है और गरुड़ के पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। इसका मतलब धर्म के रास्ते से नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती है वो स्थायी होती है, वो धर्म के काम में लगाती है। ये बड़े बड़े मंदिर जो बने हुए हैं ये लोगों के पास वो लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये नारायण के साथ आती है वो लक्ष्मी है। तो उल्लू वाले लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया है, लेकिन नारायण के साथ लक्ष्मी के पीछे वो आ जाए वो भाग्य की बात है। ये बड़ी बुद्धिमानी की बात है कि उसका उसका वाहन भी ऐसा है, उसको उल्लू ही मिला है चढ़ने के लिए, क्योंकि उल्लू मांगते हैं उसको तो उसी के ऊपर चढ़ के जाते हैं। तो ये तो उसको मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान को मांग ले लो, उनके पीछे वो अपने आप आ जाएगी। हाँ जी, अर्थार्थी भक्त है ध्रुव महाराज, ऐश्वर्य की खोज में थे। सुरुचि ने भेजा है कि मेरे खिलाफ क्या कर रहे हैं उधर।
तब तक उसके लिए भौतिक कर्मश को पूर्ण रूप से पार करना कर पाना दुष्कर है। ध्रुव की माता सुनीति दूरदर्शी थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र को अन्य देवताओं को त्याग कर केवल श्री भगवान की पूजा करने के लिए कहा। यहाँ पर भगवान को पद्मपलाशलोचना अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाला कहा गया है। यदि मनुष्य थका हो और वह कमल पुष्प देख ले तो उसकी सारी थकान जाती रहती है। इस प्रकार जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल मुख का दर्शन करता है तो उसका दुख कम हो जाता है। भगवान विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया गया कमल पुष्प सौभाग्य का प्रतीक है। एक ही साथ विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक प्रकार से विशेष रूप से भौतिक जीवन में परम ऐश्वर्यशाली होते हैं। भगवान को कभी कभी शिव विरंची नूतम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा तथा शिव भी नमस्कार करते हैं।
यहाँ तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब 2 मिनट इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करके फिर कथा को विराम दिया। हरे कृष्णा। सो आज के श्लोक से क्या हमारे लिए प्रैक्टिकल लेना चाहिए, माताओं को अपने बच्चों को सफलता के लिए भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने को भेजना चाहिए, ये सुनीति से माताओं को सीखना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कहीं से भी उनके दुख का निवारण नहीं हो सकता है और सुख का प्राप्ति नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सुनीति दूरदर्शी माता जी है, उन्होंने आज तक के लिए हमारे लिए ये एक अच्छा सा मार्गदर्शन किया है। बहुत कम माताएं ऐसी होती हैं जो भक्तों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहती हैं, तो वो सुनीति के प्रतिनिधि के रूप में अच्छा कार्य कर रही हैं। तो ये भागवत कथाकारों को कहना चाहिए कि माताओं ध्रुव की तरह अपने बच्चों को विष्णु की सेवा में भेजो। कोई बोलता है क्या हा? नहीं, ये उद्देश्य होना चाहिए कथा का। अच्छा, दूसरा क्या शिक्षा मिलती है आज के तात्पर्य से और श्लोक से, दूसरा क्या विशेष? जी, देवी देवताओं के पास न जाकर भगवान के पास मांगना चाहिए कुछ भी चाहिए। ठीक है, और लक्ष्मी जी को नारायण के साथ मांगना चाहिए, अकेले नहीं मांगना चाहिए। उसमें खतरा है, दोनों तरफ से खतरा है। एक तो विष्णु की नाराजगी है उसकी पत्नी मांगने से, और दूसरा उल्लू के ऊपर आएगी तो हमारा दिमाग खराब कर देगी, इसलिए कभी भी नहीं मांगनी चाहिए। और हम इच्छा की शुद्धि हो जाती है अगर भगवान से मांगते हैं, और किसी से मांगते हैं तो इच्छा और भदी हो जाती है, उसकी शुद्धि नहीं होती है, वो भदी बेकार हो जाती और बिगड़ जाती है इच्छा। ठीक है, भगवान से एक बार मांगने से बाद दोबारा मांगना नहीं पड़ता है दुनिया में, और किसी से रोज रोज मांगना पड़ता है। तो एक बार भगवान से अर्जुन ने एक बार कृष्ण को मांग लिया, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार मांग लेते हैं भगवान से फिर मांगना नहीं पड़ता, और किसी से मांगेंगे तो सारी उम्र मांगते ही रहेंगे। उसका उदाहरण क्या है, ये माता जी के यहाँ पति डालता है लाल, उसको क्या बोलते हैं, मांग मांग बोलते हैं ना, मांग भरना। सारी उम्र मांगती है कि नहीं मांगती है? अब उसका नाम ही है मांग भरना, एक बार भर दी तो सारी उम्र मांगती। ये सच्ची बात है ना मैया? तो बार बार मांगने से एक बार मांग लेना चाहिए, भगवान को मांग लेने से मांगना ही समाप्त हो जाता है। श्री प्रभुपाद की जय। गणराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समय हो गया अधिक, कोई प्रश्न तो नहीं है? किसी का कोई प्रश्न है? क्या प्रश्न है आपका? आपका नाम क्या है? विजय हरिदास, बोलिए। हरी विजय हरि जी, नहीं देवता नहीं बोला हमने, ये 15वें अध्याय भगवत गीता का श्लोक है, दिवोमो पुरुष लोके अक्षर चाक्षर ये वचन। तो वहां लिखा है अक्षर वो हैं जो बद्ध जीव हैं, बार बार संसार में आते हैं, अक्षर वो हैं जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, मुक्त जीव हैं, उसको कहते हैं। ये तो 15वें अध्याय भगवत गीता का श्लोक है कि दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। तो ज्यादा मुक्त है कि बद्ध है, ये मेरा प्रश्न है आपसे विजय हरि। ज्यादा मुक्त है कि ज्यादा बद्ध है? जेल में ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? तो आध्यात्मिक जगत में सारे मुक्त हैं, वो 75% है, 25% यहां जो है बद्ध है, उसमें भी कुछ मुक्त हैं जो भगवान की तरफ से आए हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो ज्यादा मुक्त होते हैं, बद्ध कम होते हैं, दुनिया में बद्ध ज्यादा है। तो ठीक है, और कोई किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न? क्या नाम प्रभु जी? लीला प्रेम। अच्छा, गीला प्रेम है, सूखा प्रेम नहीं। क्योंकि भक्त प्रचार में जाते हैं, पूछते हैं कि गीला प्रसाद है कि सूखा प्रसाद है। तो लीला है तो ठीक है, सूखे वाले खतरनाक होते हैं। सो लीला जी बोलिए। देवताओं को भगवान ने देने के लिए रखा है, उनका नाम ही देवता है, मतलब देते रहो, उसका महा नाम ही देवता है का मतलब देने वाले। ये जो हिरण्यकश्यप का जो प्रसंग है, ये तो भगवान की लीला है, वो तो वैकुंठ से आया है और उसको ये दिखाना है दुनिया को। तीन चीजें भगवत गीता में लिखी हैं, नरक का द्वार है कौन से, उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लोभ का प्रतीक हिरण्यकश्यप है, काम का प्रतीक रावण है और क्रोध का प्रतीक शिशुपाल है। ये तीन भगवान ने लीला करने के लिए अपने लोक से तीन बड़े बड़े असुरों के रूप में काम क्रोध लोभ के प्रतीक दुनिया में दिखाया कि सबको नाश करने वाले और नरक में ले जाने वाले हैं। तो ये लीला का भाग है इसका। इसमें से ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, वो इससे ये समझना चाहिए कि ब्रह्मा भी भगवान के अधीन है, भगवान उसको अगर गलती करता है तो सुधार सकते हैं, भगवान उनसे ऊपर, ऐसा समझना तो ठीक है। और ब्रह्मा जी ने क्यों वरदान दिया, वो भी भगवान की इच्छा थी तब वरदान दिया, क्योंकि उतना वरदान नहीं देता तो ये लीला ही नहीं होती। तो लीला नहीं होती तो आज ये कथा भी नहीं होती। ये कथा इसलिए हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे लीला मत, ऐसा वरदान मत दिया करो के मुझे आधा शेर आधा मानव बनना पड़े। वैसे मैं आने को ठीक हूं, लेकिन इसमें क्यों भगवान ने ऐसे बोला? बोला मेरी पत्नी लक्ष्मी मेरे पास नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी आपने आपने तो आपने ये जो गड़बड़ की है ये ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। हमारे घर में घोटाला डाल दिया। तो भगवान ने जरा अपनी पत्नी के प्रेम के कारण ऐसे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा बेटा है ना, बेटे को कहा ऐसा तो मत करो, घर में झमेला कर दो। हरे कृष्ण। चलो और कुछ है कि? अच्छा भैया आपका क्या नाम? अनंत मुकुंद। अनंत मुकुंद दास, बोलिए मुकुंद दास जी। अनंत उधर प्रहलाद महाराज की का शरण लेते हैं क्योंकि हिरण्यकश्यप ज्यादा हैं। उधर हम ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, वृंदावन में कम होते हैं। क्योंकि वहां भगवान की जरूरत है, वृंदावन में भगवान यहां बैठा है क्या करना है। ये इंडिया के लोग इसलिए भक्ति में, अभी भी पाकिस्तान का भक्त आएगा उसकी भक्ति हमारे भक्तों से ज्यादा दृढ़ है क्योंकि उसको भगवान की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे को तो कभी कभार काम पड़ा जाएंगे कहाँ है, यही तो कहे चले जाएंगे। तो जहाँ थोड़ा सा भय होता है वहाँ भक्ति जरूर जल्दी प्रकट होती है। ये तो यहाँ लिखा है भगवान के अवतार के विषय में लिखा है कि कंस भय का प्रतीक है जिसके कारण देवकी के अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मत्सद रूपी दोष निवारण हो गए तब भगवान का अवतार हुआ। तो भय के वातावरण में हृदय को भगवान की भक्ति में लगाना ज्यादा है। वहां तो दिखता था कि भगवान हमारे साथ आ रहे हैं, यहाँ तो भगवान के पास बैठे हुए हम सोए हुए हैं। तो वो ऐसी परिस्थिति में प्रचार करने से भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता है। तो उसका अपना एक फ्लेवर है। हरे कृष्ण। आपका क्या प्रश्न है? ये तो आपने अच्छा सोच रहे हैं। यहाँ तो सभी दूसरों को देते हैं, अपना खुद नहीं करते कुछ भी। हमने तो ऐसे देखा है अपना काम कुछ भी नहीं, दूसरे आप भक्त बन जाओ, मैं बाद में बनूंगा। प्रचार करने वाले तो बहुत है, भक्त बनने वाले बहुत कम है। आपका तो प्रश्न बड़ा अद्भुत है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं। आप तो विशेष व्यक्ति है, नहीं तो जनरली अपना विश्लेषण कोई नहीं करता है, स्वाध्याय कोई नहीं करता है कि मैं कितना आगे बढ़ाऊं, मेरा कितना अध्ययन हो रहा है, मेरी कितना जप ठीक हो रहा है, ये कोई नहीं चिंता करता है। मैंने इतना प्रचार किया, इतने देर के भक्त बने, वो हमारा ज्यादा दिमाग में होता है। तो ये आपका दृष्टिकोण अच्छा है कि हमको अपना भी स्वाध्याय करना चाहिए प्रचार के साथ साथ। वो तो चेतना महाप्रभु के, सनातन गोस्वामी के विषय में जैसे हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि आप आचार भी है और प्रचार भी है, तो इसलिए सनातन गोस्वामी सिद्धांत आचार्य, आचार प्रचार दोनों है उसके पास। तो हमारे पास आचार तो आचार डालने जितना होता है, बाकी प्रचार ज्यादा है। प्रभुपाद के साथ संस्कृत ट्रांसलेटर होता था, प्रद्युम्न उसका नाम था, उसको पंडित जी कहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी पंडित नहीं बैंडित कहते थे। तो उस जमाने में मंदिरों में तो हमारा जो स्पेशल प्रसाद खिचड़ी है वही बनता था, लेकिन कोई बड़ा आदमी मंदिर में भक्तों को निमंत्रण देता था तो भक्त दो दिन नहीं खाते थे, फास्टिंग करते थे कि आज जो है बहुत बड़ा फीस्ट है। सो इंग्लैंड में किसी के घर में प्रभुपाद जी के साथ गए, प्रभुपाद गाड़ी में आके बैठे तो प्रद्युम्न बोला बैंडित कहाँ है, कहाँ है? तो प्रभुपाद रुके हुए, प्रभुपाद बोले देखो किचन में होगा, जाके देखो किचन में होगा, जाके देखा वो किचन में पैक कर रहा था, बहुत प्लेट पैक कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा क्यों भाई क्या? बोला इट इज टू लेट प्रभुपाद टू ईट, But then why you have brought it? Tomorrow morning I will eat. तो बहुत से भक्त ऐसे करते हैं, शाम के वक्त कहते हैं प्रचार करके बहुत अच्छा प्रवचन, प्रभु जी प्रसाद ले, हम रात को नहीं खाते, लेकिन दूसरे को बोलता है लेके चलना। बोला ऐसे क्यों बोलता है? बोला अभी खाऊंगा दो गुलाब जामुन, लेके कम से कम दस देगा ना। और गाड़ी में बैठ के ही बोलता है निकालो। एक बार लड्डू बना के जेल में प्रचार करने जा रहे थे अमेरिका में भक्त, रास्ते में एक एक सबको देना शुरू किया, फिर बोला एक और अच्छा है दे दो, ऐसे करते जेल तक पहुंचे डब्बा ही खाली था। और जेल में जाने के लिए उन्होंने कहा आपके पास खाने की चीज तो कोई नहीं है ना, अंदर नहीं जा सकते, तो बोला अच्छा है डब्बा। तो भक्तों को पहले पता लगता है क्या। भक्त दिव्य पुरुष हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण बलराम की जय।